एक तरफ फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम 20वीं सदी की एक ऐसी लेखिका की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने कह सकते हैं शब्दों से मन का एक्सरे करना सीख लिया था। एडलीन वर्जीनिया स्टीफन वुल्फ 1882 में जन्मी और 1941 में दुनिया छोड़ गईं, पर उनकी आवाज़ वो आज भी गूंजती है। वो सिर्फ एक आधुनिकतावादी लेखिका नहीं थीं या निबंधकार और प्रकाशक ही नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो उपन्यास लिखने के ढंग को ही बदल दिया।
हाँ, वही ढंग ही बदल दिया।
बिल्कुल, और यही बात उन्हें इतनी खास बनाती है ना? उन्होंने सिर्फ कहानी कहने के तरीके ही नहीं बदले, बल्कि ये दिखाया कि इंसान का जो अंदरूनी अनुभव है, उसकी चेतना का प्रवाह, जिसे हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो साहित्य का केंद्र बन सकता है। वो उस दौर की उपज थी जब दुनिया तेजी से बदल रही थी।
बहुत तेजी से।
हाँ, और उन्होंने उस बदलाव की नब्ज को पकड़ा। और हाँ, स्त्रीवादी विचारों को उन्होंने जो आवाज दी, वो तो आज भी उतनी ही जरूरी है।
जरा सोचिए, वो एक तरह से विक्टोरियन युग के खत्म होने और आधुनिक युग की शुरुआत के बीच खड़ी थी। एक तरफ पुरानी नैतिक मान्यताएं, दूसरी तरफ
नई चीजें, टेलीफोन, बिजली और विचारों में भी क्रांति। डार्विन, मार्क्स, फ्रॉइड।
सही कहा, इन सब ने दुनिया को झकझोर दिया था। और लंदन के उस बौद्धिक माहौल में पली बड़ी वुल्फ ने न सिर्फ इस उथल पुथल को महसूस किया, बल्कि अपनी लेखनी से उस जटिल, थोड़ी बिखरी हुई सी चेतना को आवाज दी। तो आज हमारा मकसद यही है कि उनके जीवन और लेखन की परतों को खोलें, समझें कि कैसे उन्होंने बदलते वक्त को अपनी कला में उतारा।
हाँ, और इसे समझने के लिए मुझे लगता है उस दौर के मिजाज को समझना बहुत जरूरी है।
ठीक है,
मतलब आधुनिकतावाद, मॉडर्निज्म,
जरूर,
ये सिर्फ लिखने का एक स्टाइल नहीं था।
नहीं, ये तो पूरा आंदोलन था।
बिल्कुल, एक पूरा सांस्कृतिक आंदोलन। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध ने, उसकी विभीषिका ने पुरानी दुनिया के कई यकीन तोड़ दिए थे। वो जो विक्टोरियन युग का यथार्थवाद था ना, जहां लगता था सब कुछ कितना साफ सुथरा है, नैतिक रूप से तय है, वो अब काफी नहीं लग रहा था।
हाँ, जैसे दुनिया बाहर से टूट रही थी, अंदर से भी चीजें बदल रही थी। वो हेनरी बर्गसन जैसे दार्शनिक थे, समय और चेतना की बात कर रहे थे
कि वो तरल है, लगातार बह रही है। और सिगमंड फ्रॉयड तो अवचेतन मन की गहराइयों को खोल ही रहे थे। ये सारे विचार जैसे हवा में थे। और फिर कला की दुनिया में भी तो जबरदस्त हलचल थी।
ओ हाँ, वो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट प्रदर्शनियां।
हाँ, वुल्फ के ही दोस्त थे रॉजर फ्राई, उन्होंने लंदन में ये प्रदर्शनियां लगाई। सेजान, वैन गॉग, पिकासो, अब ये कलाकार क्या कर रहे थे? वो बाहरी दुनिया की बस नकल नहीं कर रहे थे।
नहीं, वो अपने अंदरूनी अनुभव को दिखा रहे थे।
एग्जैक्टली, अपने नजरिए को रंग दे रहे थे। तो इसने वुल्फ जैसे लेखकों को भी हिम्मत दी कि भाई, इंसानी मन की सच्चाई को पकड़ने के लिए पारंपरिक कहानी के ढांचों से बाहर निकलना होगा। अब बाहरी घटनाओं से ज्यादा जरूरी था कि अंदर क्या चल रहा है।
और प्रथम विश्व युद्ध का जिक्र आपने किया, उसका असर तो यकीनन बहुत गहरा रहा होगा।
बहुत गहरा। उस युद्ध ने प्रगति और तर्क पर जो विक्टोरियन भरोसा था ना, उसे एकदम चकनाचूर कर दिया। लाखों मौतें, इतनी तबाही, इसका एक पूरी पीढ़ी पर गहरा आघात था। ये जो खालीपन था, ये सदमा, ये हमें वुल्फ के लेखन में बार बार महसूस होता है। खासकर आप मिसेस डेलवे देखें।
हाँ, उसमें वो सेप्टिमस स्मिथ का किरदार है।
बिल्कुल, जो युद्ध के मानसिक आघात से जूझ रहा है, तो वो दिखाती है कि कैसे पुरानी दुनिया का ढांचा चरमरा रहा था।
और इसी उथल पुथल के बीच उन्हें एक बौद्धिक सहारा मिला, ब्लूम्सबरी ग्रुप। ये सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप तो नहीं था, है ना?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उस समय के कुछ सबसे तेज, सबसे गैर परंपरागत दिमागों का जमावड़ा था। सोचिए जरा, जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे अर्थशास्त्री, लिटन स्ट्रेची जैसे लेखक, ई.एम. फॉर्स्टर और चित्रकार वेनेसा बेल, जो वर्जीनिया की बहन ही थी।
क्या बात है।
हाँ, और ये लोग क्या कर रहे थे? पुरानी सामाजिक रूढ़ियों को, कला के बंधनों को, दकियानूसी विचारों को चुनौती दे रहे थे। उनके बीच बौद्धिक ईमानदारी और कह सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का माहौल था। और इस खुलेपन ने, इसने यकीनन वर्जीनिया वुल्फ की जो प्रयोग करने की भावना थी, उसे पंख दिए। उन्हें वो आज़ादी मिली जो शायद अकेले मिलना मुश्किल होता।
तो ये माहौल था जिसमें वर्जीनिया वुल्फ का लेखन पनप रहा था। लेकिन उनकी नींव तो शुरुआती जीवन में ही पड़ी होगी। 25 जनवरी 1882, लंदन, एक बहुत ही पढ़े लिखे घर में जन्म।
हाँ पिता, सर लेस्ली स्टीफन, जाने माने विद्वान, इतिहासकार, आलोचक। उन्होंने तो वो डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी जैसा विशाल काम किया था। तो घर में किताबों का, बौद्धिक चर्चाओं का माहौल तो था ही। माँ जूलिया प्रिंसेप स्टीफन अपनी सुंदरता और सामाजिक कामों के लिए जानी जाती थीं। माहौल बौद्धिक रूप से बहुत उत्तेजक था, पर हाँ, भावनात्मक रूप से शायद उतना ही जटिल और कभी कभी भारी भी। पिता का व्यक्तित्व काफी रौबदार था।
और उस दौर की कड़वी सच्चाई उनकी शिक्षा में दिखती है। भाइयों को तो कैम्ब्रिज भेज दिया।
हाँ, थोबी और एड्रियन को।
लेकिन वर्जीनिया और वेनेसा को घर पे ही पढ़ाया गया।
ये तो सरासर लैंगिक भेदभाव था।
बिल्कुल, उस समय का यही चलन था।
हालांकि एक फायदा ये हुआ कि उन्हें अपने पिता की विशाल लाइब्रेरी मिली, जिसमें वो जी भर कर पढ़ सकती थीं। वो किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं थी। लेकिन इसका असर दोहरा हुआ। एक तरफ तो उनकी मौलिक सोच बिना किसी अकेडमिक दबाव के बढ़ी, वो अपनी मर्जी से पढ़ी।
लेकिन दूसरी तरफ
उनके मशहूर निबंध अ रूम ऑफ वन्स ओन में बहुत साफ दिखती है, जहां वो कहती हैं कि महिलाओं को लिखने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता यानी पैसा और एक निजी स्पेस, अपना कमरा, इसकी भी जरूरत होती है। ये सीधे उनके अपने अनुभव से निकली बात थी।
उनके बचपन में सिर्फ बौद्धिक माहौल ही नहीं था, गहरे भावनात्मक आघात भी थे। 13 साल की उम्र में माँ का गुजर जाना और उससे उनका पहला मानसिक अवसाद।
हाँ, वो बहुत बड़ा सदमा था। और फिर सौतेले भाइयों द्वारा यौन शोषण की जो दर्दनाक घटनाएं थीं, उनका असर तो जिंदगी भर रहा।
निश्चित रूप से ये अनुभव उनके मन पर गहरे निशान छोड़ गए होंगे, और शायद उनके लेखन में भी इसकी झलक मिलती है। रिश्तों की जटिलता, वो अंदरूनी डर और बाहरी दुनिया के सामने एक सामान्य चेहरा बनाए रखने की कोशिश।
बिल्कुल। फिर 1904 में पिता की मृत्यु हुई। ये भी एक बड़ा आघात था, लेकिन इसने एक तरह से एक मुक्ति का दरवाजा भी खोला। भाई बहन केंसिंगटन के पुराने, कुछ भारी से माहौल वाले घर को छोड़कर ब्लूम्सबरी आ गए, 46 गॉर्डन स्क्वायर।
और यहीं से ब्लूम्सबरी ग्रुप की कहानी शुरू हुई, अनौपचारिक रूप से। और वर्जीनिया का पेशेवर लेखन करियर भी, टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट के लिए समीक्षाएं लिखना।
हाँ, ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, बौद्धिक और सामाजिक दोनों तरह की आज़ादी का दौर। अब वो अपने पिता की भारी भरकम छाया से बाहर थीं और अपने जैसे सोचने वाले लोगों के बीच खुलकर विचारों का लेन देन कर सकती थीं।
चलिए अब उनके लेखन की यात्रा पर आते हैं। शुरुआती काम, जैसे आपने कहा, ज्यादा पारंपरिक था।
हाँ, उनके पहले दो उपन्यास द वॉयज आउट 1915 और नाइट एंड डे 1919 ये काफी हद तक विक्टोरियन शैली में थे। मतलब एक कहानी है, वो आगे बढ़ती है, पात्रों का विकास होता है, लेकिन उनमें भी वो बीज थे जो बाद में पनपे, खासकर महिलाओं के बौद्धिक और सामाजिक बंधनों पर सवाल, उनकी अंदरूनी दुनिया की एक हल्की सी झलक। ऐसा क्यों?
क्योंकि यहाँ उन्होंने पारंपरिक कहानी कहने के तरीके से, कह सकते हैं, एक निर्णायक दूरी बना ली। उपन्यास का नायक है जैकब, जो युद्ध में मारा जाता है, लेकिन हम उसे सीधे तौर पर बहुत कम जान पाते हैं। वुल्फ उसका चरित्र कैसे रचती हैं, उसके पीछे छूट गए प्रभावों से, दूसरों की यादों से, उसके कमरे में पड़ी चीजों से।
अच्छा,
जैसे बिखरे हुए टुकड़ों से तस्वीर बनाना।
बिल्कुल,
जैसे किसी टूटे हुए आईने के टुकड़ों से एक तस्वीर बनाने की कोशिश हो। ये बाहरी घटनाओं के बजाय चरित्र की अनुपस्थिति और उसके बिखरे हुए निशानों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये उस समय बहुत नई बात थी।
और इसके बाद तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी 3 सबसे मशहूर कृतियां एक के बाद एक आई, पहले मिसेस डैलोवे 1925।
बिल्कुल,
सिर्फ एक दिन की कहानी, लेकिन उसमें कितनी परतें हैं। ओ बिल्कुल, लंदन में जून का एक दिन, मुख्य पात्र क्लेरिसा डैलोवे, जो शाम को एक पार्टी दे रही हैं, और दूसरी तरफ वो सेप्टिमस स्मिथ, युद्ध के आघात से गुजर रहा नौजवान। उपन्यास इन दोनों के और बाकी पात्रों के भी विचारों, यादों, संवेदनाओं के प्रवाह में बहता है। बाहरी घटनाएं बहुत कम है, पर मन के अंदर एक पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है।
हाँ, वो समय का एहसास, यादों का अचानक आना जाना, समाज के नियम और अंदर की सच्चाई का तनाव।
बिल्कुल, ये सब कुछ उसमें बुना हुआ है, और यहीं पर उनका वो चेतना प्रवाह अपनी पूरी ताकत से सामने आता है।
ये चेतना प्रवाह यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को थोड़ा और समझाएंगी, ये असल में कैसे काम करता है उनके लिखन में।
वुल्फ इसे कहती थी जीवन का प्रकाशमान प्रभा मंडल, द ल्यूमिनस हैलो। मतलब वो लगातार बहता हुआ अनुभव जो हमारा मन हर पल महसूस करता है। इसमें सिर्फ तर्क वाले विचार नहीं होते, बल्कि अचानक आई कोई याद, कोई अधूरी सी भावना, हमारी इंद्रियों के अनुभव, जैसे सड़क का शोर सुनाई देना या फूलों की खुशबू आना, ये सब एक साथ गुंथे होते हैं।
ठीक,
वैसे ही जैसे असल जिंदगी में हमारे दिमाग में होता है।
हाँ बिल्कुल, वो बाहरी घटनाओं की सीधी सपाट रिपोर्टिंग नहीं करती, वो पाठक को सीधे चरित्र के मन के अंदर ले जाती हैं, उसकी सोच की लहरों में गोते लगवाती हैं। हाँ ये पाठक से थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगता है, उसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अनुभव बहुत गहरा होता है।
इसके बाद आया टू द लाइट हाउस 1927। इसे कई लोग उनका सबसे बेहतरीन काम मानते हैं, इसमें क्या खासियत है?
ये बेहद घना और कह सकते हैं काव्यात्मक उपन्यास है। कहानी रैम्से परिवार की है जो स्कॉटलैंड के एक द्वीप पर छुट्टियां मना रहा है। उपन्यास तीन हिस्सों में है। पहला हिस्सा युद्ध से पहले का एक दिन, बीच का हिस्सा टाइम पासेस, बहुत छोटा लेकिन बहुत मार्मिक है जिसमें युद्ध और मृत्यु का असर दिखता है, और तीसरा हिस्सा युद्ध के 10 साल बाद का है।
तो ये समय के बीतने, रिश्तों के बदलने की कहानी है?
हाँ, और यादों के धुंधलाने और फिर से उभरने की भी, और ये कि कला के जरिए हम खोई हुई चीजों को कैसे सहेजने की कोशिश करते हैं। इसकी बनावट ही अपने आप में एक प्रयोग है जो समय की सीधी रेखा में चलने वाली गति को तोड़ देती है।
और फिर ऑरलैंडो, ए बायोग्राफी 1929, ये तो बिल्कुल अलग ही तरह का उपन्यास लगता है।
हाँ, ये बहुत मजेदार, कल्पना से भरा और चंचल उपन्यास है। एक तरह से ये उनकी दोस्त और शायद प्रेमिका वीटा सैकविल वेस्ट को एक प्रेम पत्र जैसा है। इसका नायक ऑरलैंडो सैकड़ों साल तक जीता है, एलिजाबेथ प्रथम के युग से लेके 1928 तक, और इस दौरान
वो लिंग भी बदलता है, पुरुष से स्त्री बन जाता है।
हाँ, तो इसके जरिए वुल्फ ने लैंगिक पहचान कितनी तरल हो सकती है इस पर बात की, इतिहास कैसे लिखा जाता है, साहित्यिक परंपराएं क्या हैं, इन सब पर मजेदार व्यंग्य किया। ये उनकी प्रयोग करने की क्षमता और उनके हास्यबोध दोनों का जबरदस्त उदाहरण है।
और उनके गैर काल्पनिक लेखन को कैसे भूल सकते हैं, खासकर ए रूम ऑफ वन्स ओन 1929।
अरे वो तो नारीवादी साहित्यिक आलोचना का एक तरह से फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक मील का पत्थर। उसमें वुल्फ बड़े तर्क और पैनेपन से ये सवाल उठाती हैं कि इतिहास में महिला लेखकों की इतनी कमी क्यों रही है।
नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बाधाएं थीं।
बिल्कुल, उनका निष्कर्ष यही था, महिलाओं को अपनी रचनात्मकता को सच में इस्तेमाल करने के लिए पैसा और अपना एक कमरा चाहिए, यानी आर्थिक स्वतंत्रता और निजी स्पेस। ये तर्क आज भी कितना प्रासंगिक है।
और सबसे ज्यादा प्रयोगात्मक शायद द वेव्स 1931 को माना जाता है।
हाँ, ये शायद उनका सबसे रेडिकल काम है। इसमें पारंपरिक कहानी या चरित्र चित्रण तो लगभग है ही नहीं। ये 6 दोस्तों की कहानी है, बचपन से बुढ़ापे तक, लेकिन सिर्फ उनके आंतरिक एकालापों, उनके मोनोलॉग्स के जरिए कही गई है।
मतलब जैसे हम सिर्फ उनकी सोच सुन रहे हों।
हाँ बिल्कुल, ये लगभग एक गद्य कविता जैसा है। पहचान, समय, मृत्यु, चेतना की प्रकृति, इन सब पर एक गहरा ध्यान। ये पाठक से बहुत ज्यादा मांग करता है, मानती हूँ, लेकिन इसका अनुभव एकदम अनूठा है। ये शायद ये दिखाता है कि हमारा जो मैं है वो उतना ठोस नहीं है जितना हम समझते हैं, वो तो दूसरों के साथ रिश्तों और अनुभवों के प्रवाह में बनता बिगड़ता रहता है।
और उनका आखिरी उपन्यास बिटवीन द एक्ट्स 1941, जो उनकी मृत्यु के बाद छपा, वो जैसे एक युग के अंत का संकेत देता है।
बिल्कुल, कहानी दूसरे विश्व युद्ध के एकदम दहलीज पर सेट है। एक गांव में एक ऐतिहासिक तमाशा हो रहा है, और वो तमाशा जैसे इंग्लैंड के इतिहास और सभ्यता का ही एक टूटा फूटा अनिश्चित सा प्रतिबिंब बन जाता है। उसमें भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता और अनिश्चितता झलकती है।
तो अगर हम उनके मुख्य साहित्यिक योगदानों को समेटना चाहें, उन्होंने साहित्य को क्या दिया खासतौर पर?
सबसे पहले तो उन्होंने उपन्यास का फोकस बदला, बाहरी घटनाओं से हटाकर व्यक्ति के आंतरिक अनुभव पर, उसकी चेतना पर ले आई। और इसके लिए उन्होंने चेतना प्रवाह की अपनी एक खास शैली विकसित की जिससे पाठक सीधे पात्र के मन की दुनिया में उतर जाता है। दूसरा, उन्होंने मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को नई गहराई दी, दिखाया कि साधारण से दिखने वाले पलों में भी कितनी जटिलता, कितना ड्रामा छिपा हो सकता है।
और नारीवादी विचारों में उनका योगदान, वो कितना महत्वपूर्ण था?
ओह, बेहद महत्वपूर्ण। वो नारीवादी आंदोलन की एक बहुत ही सशक्त और मौलिक आवाज थी। ए रूम ऑफ वन जोन और 3 गिनीज जैसे निबंधों में उन्होंने बड़े पैनेपन से पितृसत्तात्मक समाज की उन संरचनाओं का विश्लेषण किया जो महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दबाती हैं। उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई बल्कि उसके कारणों की जड़ तक गई।
और वो एक निडर प्रयोगकर्ता भी थी, लगातार फॉर्म के साथ खेलती रहीं। कभी कहानी के ढांचे को तोड़ा, कभी गद्दे और पद्दीनी सीमाओं को धुंधला किया, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश।
हाँ बिल्कुल, और उनके लेखन में कुछ विषय हैं जो बार बार लौट कर आते हैं, जैसे पहचान कितनी मायावी है, कितनी बदलती रहती है, समय कैसे लगातार बहता है और हमें बदलता है, हमारा जो अंदरूनी स्व है और समाज के सामने जो हमारा चेहरा है उसके बीच का फासला, और इस सारी उथल पुथल में कला कैसे हमें अर्थ खोजने या शायद रचने में मदद कर सकती है। संक्षेप में कहूँ तो उन्होंने स्त्री चेतना को साहित्य के केंद्र में लाकर और उसकी जटिलताओं को आवाज़ देने के लिए एक नई भाषा गढ़कर उपन्यास की संभावनाओं को बहुत ज़्यादा विस्तार दिया।
उनकी विरासत भी तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरी रही है ना, एकदम सीधी रेखा नहीं रही।
हाँ ये सही है, जीते जी वो साहित्य किलीट वर्ग में सम्मानित तो थीं, लेकिन विवादास्पद भी कम नहीं थीं। उनकी मृत्यु के बाद कुछ दशकों तक उनका प्रभाव कुछ कम हुआ, शायद इसलिए कि उनका लेखन उस समय के जो ज्यादा पारंपरिक साहित्यिक मापदंड थे उन पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता था।
लेकिन फिर 1970 के दशक में खासकर नारीवादी आलोचना ने उन्हें फिर से खोजा, उनके काम को एक नई नजर से देखा गया।
बिल्कुल, तब लोगों ने ये समझा कि वो सिर्फ स्टाइल की जादूगरनी नहीं थी, बल्कि उनकी शैली में ही गहरी सामाजिक और राजनीतिक आलोचना छिपी थी। उन्हें नारीवादी आंदोलन की एक पुरखिन, एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में पहचाना गया, और तब से उनका महत्व लगातार बढ़ता ही गया है।
हाँ, अनगिनत लेखकों पर उनका असर दिखता है। माइकल कनिंघम का उपन्यास दी आवर्स,
हाँ, जो मिसेस डेलोवे पर आधारित है और जिस पर वो मशहूर फिल्म भी बनी, मार्गरेट एटवुड, एलिस वॉकर, जेडी स्मिथ, बहुत लंबी लिस्ट है उन लेखकों की जिन्होंने उनसे प्रेरणा ली है
और आज भी वो प्रासंगिक हैं। लिंग, शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य, युद्ध का आघात, रचनात्मकता की जरूरतें, ये सब मुद्दे तो आज भी हमारे समाज के केंद्र में हैं। उनकी अंतर्दृष्टि आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी याद कर लें जो उनके विचारों का सार पकड़ते हैं।
हाँ जरूर, सबसे पहले तो वही रूम ऑफ वंस ओन से, एक महिला के पास अगर उसे फिक्शन लिखना है तो पैसा और अपना एक कमरा होना चाहिए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तो एक घोषणा पत्र जैसा है।
बिल्कुल, और टू द लाइट हाउस से ये अंश मुझे बहुत पसंद है। जीवन का अर्थ क्या है, महान रहस्योद्घाटन कभी नहीं हुआ, इसके बजाय छोटे छोटे दैनिक चमत्कार थे, रोशनियां थीं, अंधेरे में अप्रत्याशित रूप से जलाई गई माचिस की तीलियां थीं। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि जीवन का अर्थ किसी बड़े सिद्धांत में नहीं बल्कि अनुभव के उन छोटे चमकते हुए पलों में छिपा हो सकता है।
उनकी डायरी का एक वाक्य है जो उनके अपने अंदर के द्वंद्व को दिखाता है, मैं जड़ हूं लेकिन मैं बहती हूं, आई एम रूटेड बट आई फ्लो, एक ही समय में स्थिरता भी और प्रवाह भी, रोजमर्रा की जिंदगी और चेतना की वो अंतहीन लहरें।
क्या बात है, और मिसेस डेलोवे से समाज पर वो तीखी टिप्पणी, परम रहस्य राष्ट्र को बताया जाना चाहिए कि समझदार और पागल अगल बगल रहते हैं, ये जिसे हम सामान्य कहते हैं और जिसे पागलपन कहकर खारिज कर देते हैं, उसके बीच की वो पतली सी और अक्सर मनमानी रेखा पर सवाल उठाता है।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू भी हैं, जैसे होगार्थ प्रेस की स्थापना उन्होंने खुद की थी पति के साथ मिलकर।
हाँ, 1917 में अपने पति लियोनार्ड वुल्फ के साथ। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ये वर्जीनिया के मानसिक सेहत के लिए एक तरह की थेरेपी जैसा था, हाथ से प्रिंटिंग करने का शौक, लेकिन धीरे धीरे ये एक बहुत महत्वपूर्ण पब्लिशिंग हाउस बन गया। उन्होंने वुल्फ के अपने कामों के अलावा टीएस एलियट, कैथरीन मैंसफील्ड जैसे लेखकों को छापा और यहाँ तक के सिगमंड फ्रॉयड के मनोविश्लेषण पर लिखे गए लेखों के पहले अंग्रेजी अनुवाद भी हॉगार्थ प्रेस ने ही छापे।
अच्छा, और वीटा सैक्विलवेस के साथ उनके रिश्ते का भी जिक्र आता है जो ऑरलैंडो की प्रेरणा बना।
हाँ, वो एक बहुत गहरा और जटिल रिश्ता था जिसने उनके जीवन और लेखन दोनों पर असर डाला, और ये उस दौर की सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देने का भी एक तरीका था कह सकते हैं।
उनके मानसिक स्वास्थ्य के संघर्षों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो जीवन भर उससे जूझती रहीं, जिसे आज शायद हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, अवसाद के दौरे उन्हें बार बार आते थे।
हाँ, और लेखन अक्सर उनके लिए एक सहारा बनता था, लेकिन कभी कभी शायद वही भारी भी पड़ जाता था, ये बहुत जटिल था।
और ये भी जानना दिलचस्प है कि उन्होंने औपचारिक सम्मान ठुकरा दिए थे।
बिल्कुल, उन्हें दो बार डेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि ऑफर की गई लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, ये शायद उन सत्ता संरचनाओं के प्रति उनकी आलोचना का प्रतीक था। उनके लिए असली सम्मान शायद अपनी शर्तों पर लिखना और जीना था, रचनात्मक स्वायत्तता थी।
तो वर्जीनिया वुल्फ हमें क्या याद दिलाती हैं? शायद यही कि साहित्य सिर्फ बाहरी दुनिया की कहानी नहीं कहता, वो हमारे अंदर की दुनिया का, हमारे मन की उन अनकही गहराइयों का नक्शा भी खींच सकता है।
बिल्कुल। और एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, आज के इस डिजिटल युग में जब हम लगातार बाहरी सूचनाओं और शोर से घिरे रहते हैं, क्या वर्जीनिया वुल्फ की तरह अपने लिए एक मानसिक कमरा खोजना, एक ऐसा स्पेस जहां हम अपने अंदरूनी जीवन से जुड़ सके, सच में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया?
जरूर सोचने वाली बात है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।